नमस्कार भारत, आज है बुधवार 27 अप्रैल और मैं निखिल रंजन। अमेरिका के 5 राज्यों में प्राइमरी के नतीजे आने लगे हैं। रुझानों में हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप आगे। भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों की दिल्ली में मुलाकात तो हुई, लेकिन कितने काम की बातचीत?
मिल लेना जो है एक तो अच्छी बात थी। अब इसके बाद अगर कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग के सिलसिले में प्रोग्रेस नहीं हुई तो इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए। दोनों ममालिक के पास ये लग्जरी नहीं है।
अगस्ता हेलीकॉप्टर की सौदेबाजी में भ्रष्टाचार पर इतालवी कोर्ट के फैसले से भारत में तेज हुई राजनीति। पानी की कमी से जूझते झारखंड पर सुनिएगा खास रिपोर्ट।
नहाने धोने का, बैल बकरी का भी बहुत चीज का समस्या आएगा सर, और ऐसे भी हम लोग रात भर ऐसे सोते नहीं है सर पानी के चलते।
अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर 5 राज्यों में हो रहे प्राइमरी खत्म हो गए हैं और अब नतीजों का इंतजार है। जनमत सर्वेक्षणों के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन के जीतने की संभावना है। वेनेजुएला की सरकार ने देश में चल रहे जबरदस्त बिजली संकट को देखते हुए ऐलान किया है कि सभी सरकारी दफ्तर सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही खुलेंगे। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति अरिस्तोबोलो इस्तोरीज ने कहा है कि देश के 20 लाख सरकारी कर्मचारी सिर्फ सोमवार और मंगलवार को ही दफ्तरों में आएं। सरकार ने अल नीनो प्रभाव की वजह से देश में आई पानी की कमी को बिजली संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष ने संकट से निपटने में सरकार की नीति की कड़ी आलोचना की है। बांग्लादेश की प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील सारा हुसैन ने कहा है कि देश में हालात बहुत खराब हैं और सरकार के स्थिति नियंत्रण में होने के तमाम दावे गलत हैं। बांग्लादेश में इस सप्ताह समलैंगिकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है और पिछले सप्ताह एक प्रोफेसर की हत्या कर दी गई थी। हुसैन ने कहा,
It's just not good enough anymore for us to hear.
सरकार तमाम घटनाओं के बाद भी यही कहे जा रही है कि स्थिति काबू में है और हर कोई महफूज है। ये गलत है, ये कह देना काफी नहीं है। यहाँ कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। हमें नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। हमें इसे रोकना होगा। एक समाज के तौर पर हमें इन अपराधों के खिलाफ खड़े होना होगा। ये थी बांग्लादेश की प्रमुख मानवाधिकार वकील सारा हुसैन। हाल के दिनों में हुई कई ब्लॉगरों और धर्मनिरपेक्ष लेखकों की इन हत्याओं के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथियों का हाथ माना जा रहा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्पेन में नई सरकार के गठन में नाकामी के बाद एक बार फिर से जून में चुनाव होंगे। पिछले साल दिसंबर में हुए चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। सरकार बनाने को लेकर तमाम दलों के बीच 2 दिनों तक चल रही बातचीत विफल रही और स्पेन के राजा ने कहा कि देश में चल रहा राजनीतिक संकट तब तक जारी रहेगा जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते। अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक एप्पल ने साल की पहली तिमाही में अपनी आमदनी में गिरावट दर्ज की। साल 2003 के बाद से यह पहला मौका है जब किसी तिमाही एप्पल की आमदनी में कमी देखी गई। पिछले साल इसी अवधि के दौरान हुई आमदनी की तुलना में एप्पल की कमाई में 13% की गिरावट दर्ज की गई। चीन में एप्पल उत्पादों की बिक्री में 25% तक की कमी देखी गई। चीन अमेरिका के बाद एप्पल के लिए सबसे बड़ा बाजार है। विशेषज्ञों के मुताबिक आईफोन की बिक्री में आई कमी इस गिरावट की वजह हो सकती है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। शुरुआत करते हैं अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर 5 राज्यों में हुए प्राइमरी के नतीजे आने लगे हैं। सभी ओपिनियन पोल में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन को खासी बढ़त मिलती दिखाई दी है। ट्रंप को रोकने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के दूसरे उम्मीदवार टेड क्रूज और जॉन कैसिच हाथ मिला चुके हैं। इधर हिलेरी क्लिंटन के समर्थकों को लगता है कि वो न सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवारी हासिल करेंगी बल्कि अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। जरा सुनिए उनकी समर्थक कैरोलिन क्या कहती हैं।
This is hers to win. She is going to sweep these closed primaries, bring all the Democrats together and take it all the way to the nomination. She's learned.
हिलेरी की जीत पक्की है, सभी डेमोक्रेट्स उन्हें समर्थन देंगे, वो उम्मीदवारी हासिल करके ही रहेंगी। वो एक जुझारू महिला हैं और पूरा अमेरिका एक महिला राष्ट्रपति चुनने के लिए तैयार हो चुका है। ये पूरी दुनिया की महिलाओं की जीत होगी। हम एक महिला राष्ट्रपति चुनने जा रहे हैं। ये थी हिलेरी क्लिंटन की एक समर्थक। लेकिन सबकी राय ऐसी नहीं है। हिलेरी के विरोधियों का कहना है कि महिला होना तो ठीक है, लेकिन वो राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के टेड क्रूज की समर्थक लॉरी क्या कहती हैं, सुनिए।
There's getting a woman as president is one thing, but you have to pick the right woman. And, I don't think
महिला राष्ट्रपति चुनना तो बढ़िया बात है, लेकिन इसके लिए कोई सही महिला भी तो हो। मुझे नहीं लगता कि हिलेरी क्लिंटन इस पद के लिए सही उम्मीदवार हैं। मैं टेड क्रूज को वोट देने जा रही हूं। वो अमेरिका के संविधान में भरोसा रखते हैं और हर तरह से उसका पालन करते हैं। मेरे हिसाब से अमेरिका एक महान देश है और हिलेरी की नीतियाँ ओबामा से कुछ अलग नहीं। अब हम बदलाव चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के नेता टेड क्रूज की समर्थक। और आइए ताजा हाल जानने के लिए चलते हैं वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या अब तक पता चल पाया है नतीजों के बारे में?
देखिए, अब तक जो रुझान आए हैं उनके अनुसार दोनों ही पार्टियां, यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, दोनों ही के जो फ्रंट रनर्स थे, यानी हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ही के लिए एक अच्छी रात रही है ये। पांच राज्यों में चुनाव थे और मतों की गिनती अभी शुरू ही हुई है, लेकिन एग्जिट पोल्स और आरंभिक रुझानों के आधार पर जो अमेरिकी मीडिया ने प्रोजेक्शंस किए हैं उनके अनुसार रिपब्लिकन रेस में डोनाल्ड ट्रंप ने पांच में से पांचों राज्यों में जीत हासिल कर ली है, यानी मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, कनेक्टिकट, डेलावेयर और रोड आइलैंड में। वहीं डेमोक्रेटिक रेस में पांच राज्यों में से तीन में हिलेरी क्लिंटन को विजेता घोषित कर किया गया है, यानी मैरीलैंड, डेलावेयर और पेंसिल्वेनिया में। वहीं रोड आइलैंड और कनेक्टिकट के प्रोजेक्शंस अभी नहीं आए हैं, लेकिन आरंभिक गिनती में कनेक्टिकट में वो आगे चल रही हैं, वहीं रोड आइलैंड में बर्नी सैंडर्स आगे हैं, लेकिन संभव है कि पांच में से चार में उन्हें जीत हासिल हो जाए।
ब्रजेश, अगर इन रुझानों को नतीजा मान लिया जाए तो रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप इन नतीजों के साथ कितने मजबूत हो गए हैं?
देखिए, उनकी दावेदारी आज के बाद काफी मजबूत जरूर हुई है, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की रेस है वो हर दिन के साथ और नई पेचीदगियां ला रही हैं। ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पार्टी प्रबंधन उनका साथ नहीं दे रही है, और रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के लिए जैसा कि आप जानते हैं 1237 डेलीगेट्स की जरूरत है, लेकिन अगर किसी एक उम्मीदवार को ये संख्या नहीं मिल पाई तो पार्टी के प्रतिनिधि दोबारा से वोट डालते हैं और दोबारा होने वाले वोट पे वो जिसे चाहे वो वोट डाल सकते हैं, यानी प्राइमरी चुनाव में जो जनता ने किसे चुना है ये मायने नहीं रखता। ट्रंप की टीम के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि अगर वो 1237 के मैजिक नंबर से कुछ पीछे रह गए तो पार्टी प्रबंधन प्रतिनिधियों को किसी और उम्मीदवार को वोट डालने के लिए राजी कर लेगी, और इसीलिए ट्रंप की टीम की कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह ये 1237 हासिल कर ले। उनके दोनों प्रतिद्वंदी टेड क्रूज और जॉन कैसिक इस गणित से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वो अब किसी हाल में 1237 तक नहीं पहुंच सकते, और उन दोनों की कोशिश इस बात की है कि ट्रंप को भी वहां तक नहीं पहुंचने दिया जाए जिससे दोबारा वोटिंग की गुंजाइश बन सके।
इधर जो डेमोक्रेटिक पार्टी में हिलेरी क्लिंटन की स्थिति अब क्या कहती है, उनकी जीत का काफिला कहां तक जाता नजर आ रहा है?
देखें, डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी हासिल करने के लिए 2383 यानी 2383 डेलीगेट्स या पार्टी के प्रतिनिधियों की जरूरत होती है, और हिलेरी क्लिंटन उस गणित में बर्नी सैंडर्स से काफी आगे निकल गई हैं। हर राज्य को वहां की आबादी के हिसाब से डेलीगेट्स दिए जाते हैं और जिस उम्मीदवार को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसी अनुपात में उसे वहां डेलीगेट्स मिलते हैं। माना जा रहा है कि आज का जो ये परिणाम या रुझान आप कह लें कि आ रहा है, उसके बाद बर्नी सैंडर्स के लिए क्लिंटन को डेलीगेट्स की दौड़ में पछाड़ना एक तरह से असंभव हो गया है, और सैंडर्स पर अब उम्मीदवारी की रेस से अपना नाम वापस लेने के लिए दबाव बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले जो उन्होंने भाषण दिया है उसमें उन्होंने साफ किया है कि वो सिर्फ उम्मीदवारी हासिल करने के लिए रेस में नहीं है, वो अमेरिका में एक आंदोलन को जन्म दे रहे हैं जिससे असमानता दूर हो सके, सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिले और उच्च शिक्षा मुफ्त हो जाए, और उनकी टीम का यही कहना है कि वो आखिर तक इस रेस में बने रहेंगे, यानी जो जून 7 को कैलिफोर्निया में चुनाव होगा और जून 14 को वॉशिंगटन डीसी जो बहुत छोटा चुनाव होगा, तब तक वो कह रहे हैं कि वो चुनाव में बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक रेस की तस्वीर अब इसके बावजूद काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है, लेकिन रिपब्लिकन रेस की राजनीति फिलहाल लंबी चलेगी और जानकारों की माने तो शायद काफी गंदी चलेगी।
जी ब्रजेश उपाध्याय, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अपने अगले कार्यक्रम में भी हम आपसे बात करेंगे। और अब रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की कल दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान भारतीय विदेश सचिव ने पठानकोट और मुंबई के चरमपंथी हमलों की जांच और दोषियों पर मुकदमे चलाने की मांग की। उधर पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर एक अहम मसला है जिसका हल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। बातचीत में दूसरे मुद्दे भी उठे लेकिन समग्र वार्ता को आगे बढ़ाने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। तो फिर इस मुलाकात को कितना सार्थक माना जाए? हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी से यही पूछा।
पहली बात तो यह है कि मिल लेना जो है एक मैं समझता हूँ अच्छी बात थी। अब इसके बाद अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग के सिलसिले में प्रोग्रेस नहीं हुई तो इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन इससे हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए। दोनों ममालिक के पास ये लग्जरी नहीं है कि एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर दें, क्योंकि उसका दोनों को नुकसान होता है। दोनों के पास मुख्तलिफ हैं फैक्टर्स, चाहे वो मिलिट्री की या न्यूक्लियर पैरिटी जो भी है, उससे ज्यादा खतरनाक उनके पास एक और पावर है, वो एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करने की भी काफी हद तक अहलियत रखते हैं।
जिस तरह से एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ बातचीत को बहाल करने का, लेकिन वो पठानकोट के बाद एक तरह से थम सा गया। ये मुलाकात भी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई है। इस बीच में ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं, उनके ऊपर प्रेशर है सेना की तरफ से। तो क्या ये भारत के सामने जिस तरह से बातचीत में बाधा खड़ी हो रही है या बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इसमें पाकिस्तान की सेना का भी कोई रोल है क्या?
जो प्रोग्रेस हमारे दौर में हुई है वो हो ही नहीं सकती थी अगर फौज और ISI ऑन बोर्ड ना होती। और मेरा एक असम्पशन है, जो नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस नहीं है। ये काफी नहीं है कि पाकिस्तान की एक मजबूत और डिसिप्लिन फौज है और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वगैरह वगैरह। तो सोवियत यूनियन के पास 20,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे व्हेन सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड। पाकिस्तान आर्मी कंप्लीटली समझती है कि नेशनल इंटरेस्ट डिमांड क्या करता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पोलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पोलिटिकल स्टेबिलिटी। और ये डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया का अगर एक पर्पसफुल डायलॉग हो तो ये प्रमोट होते हैं। तो हमारे दौर में हम एक वक्त में तमाम मामलात को, इंडिया जो उठाता था, जो पाकिस्तान उठाता था, कश्मीर हो, टेररिज्म हो, जो भी हो, उन पे सब पे सिमल्टेनियसली आप एक वक्त बात करते थे, जो कि अब बाद में नहीं हुआ। हमारी हुकूमत चले जाने के बाद तो आपने देखा कि डिटेरेशन आई है। और अगर आपका यह ख्याल है कि आर्मी पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं होने देगी तो मैं उससे डिसएग्री करता हूँ।
एक तरीके से बातचीत अभी रुकी हुई है, ये मुलाकातें भी होती हैं तो उसमें जो रुख दिखाया जाता है वो ऐसा नहीं लगता है कि बात को आगे बढ़ाने में दोनों देश दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ऐसे में आप आगे का रास्ता क्या देखते हैं?
ये बड़ा सेंसिटिव खत्ता है और इसमें सारी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान भारत के दरमियान अमन हो। और मेरा ख्याल है कि कई दफा होता है विदाउट अनाउंसमेंट, कम से कम मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ, कोई ना कोई बैक चैनल पे बातचीत हो रही होती है। अभी जो मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान का कहीं मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने डिनाई नहीं किया कि उनका रब्ता अपने काउंटर पार्ट मिस्टर अजीत दोवाल के साथ है। मैं एक बात आपको बता दूं, ऐसे हालात नहीं है कि जी बेहतर नहीं हो सकते।
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। उधर साल 2010 के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद में इटली की एक अदालत के आदेश में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कुछ दूसरे कांग्रेसी नेताओं के बारे में कहा गया है कि इन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और बाधा डालने की कोशिश की। अब इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि इस मामले में हुए भ्रष्टाचार में कांग्रेस का कोई नेता शामिल है या नहीं। उधर एंटनी ने कहा कि इस मामले में जांच का आदेश उनकी सरकार ने दिया था, मौजूदा सरकार को जांच पूरी करनी है। दोनों पार्टियों के रुख पर ये रिपोर्ट सुनिए वात्सल्य राय से।
यूपीए सरकार के कार्यकाल में 12 इतालवी हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। साल 2010 की अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के मामले में इटली की एक अदालत के आदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कल आरोप लगाया कि कांग्रेस अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की जांच कर रही सीबीआई के काम में बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम के नारायणन और एसपीजी के तत्कालीन अध्यक्ष वीवी बांछु से पूछताछ करना चाहती थी, पर कांग्रेस ने इसमें देर करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने कहा,
द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम मिस्टर एके एंटनी।
भारतीय जनता पार्टी एके एंटनी से पूछना चाहती है कि उन्होंने मार्च 2013 में कहा था कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, अब जबकि आदेश आ चुका है उन्हें बताना चाहिए कि कांग्रेस का कोई नेता इसमें शामिल था या नहीं।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने सोमवार को कहा था कि उन्हें इटली की अदालत की टिप्पणी की जानकारी नहीं है। वहीं पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कल कहा कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है।
सीबीआई जांच का आदेश हमारी सरकार ने दिया, डील को रद्द भी हमारी सरकार ने किया, कंपनी को ब्लैकलिस्ट हमारी सरकार ने किया, केस भी हमारी सरकार ने लड़ा। इस सरकार को सिर्फ साधारण से काम करने हैं। सीबीआई जांच को पूरा कीजिए, पता कीजिए कि कौन लोग शामिल थे, उन्हें सजा दीजिए। हमने जो प्रक्रिया शुरू की थी उन्हें उसे पूरा करना चाहिए।
भारतीय अधिकारियों को घूस देने के आरोप सामने आने के बाद हेलीकॉप्टर खरीद के 3600 करोड़ रुपए के इस विवादास्पद सौदे को रद्द कर दिया गया था।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। और अब आइए रुख करते हैं कश्मीर का। भारत प्रशासित कश्मीर में कल सेना पर कथित रूप से छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली लड़की और विरोध प्रदर्शनों में 5 लोगों की मौत के बारे में अदालत ने सुनवाई की। इस बीच पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसने शिकायत करने वाली लड़की को अपने घेरे में ले रखा है और उसे अदालत में भी पेश नहीं किया गया। वहां क्या कुछ हुआ कल पूरे दिन, बता रहे हैं श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
मंगलवार को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने हिंदवाड़ा में लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ और 5 आम नागरिकों की सेना और पुलिस की फायरिंग में हलाकतों के मामले में आला सतही न्यायिक जांच की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। साथ ही परिजनों के वकील ने आरोप लगाया है कि लड़की को पुलिस ने श्रीनगर हाईकोर्ट आने से रोक दिया। कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 14 अप्रैल को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मामले की आला सतही न्यायिक जांच की मांग की थी, जिस पर आज कोर्ट में डिवीजन बेंच की अदालत में बहस हुई। बार के वकील बशीर कुरैशी ने कहा,
बार एसोसिएट विद प्रेसिडेंट मियां अब्दुल कयूम एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो आज उसके लिए स्टेट को अपना रिस्पांस भरना था। स्टेट ने अपना रिस्पांस भर, उसमें आज बहस हुई और वो रिजर्व हो गया फॉर ऑर्डर्स। उसमें जो आज बार का ये जो बार ने उसमें प्रेयर मांगी है वो ये है कि किसी हाई कोर्ट जज से जो हंदवाड़ा का ये एपिसोड है उसका प्रोब किया जाए और उसमें एक क्रेडिबल जो कोई जिसकी क्रेडिबिलिटी हो आईजीपी रैंक के ऑफिसर को एसोसिएट उस इन्वेस्टिगेशन के साथ किया जाए।
इस दौरान लड़की के परिजनों के वकील परवेज इमरोज ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने लड़की को श्रीनगर हाईकोर्ट आने से रोक दिया और लड़की को अभी तक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है।
हमारी तफसील जो मदर ने फाइल की है राजा ने, उसमें ये है कि लड़की को अभी भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा है जबकि पुलिस कह रही है वो प्रोटेक्टिव कस्टडी में है। आज लड़की को और माँ को जहाँ आना था तो पुलिस ने उसको आने नहीं दिया, तो अभी भी लड़की जो है वो बंद है वहां पे, उसको किससे मिलने नहीं दे रहे। उसको कोर्ट पे आना था या उस वो जो वुमेन्स कमीशन जाना था वहां भी बंद किया उसको वहां पे। एंड वी आर वेरी डिस्टर्ब अबाउट द गर्ल सेफ्टी, क्योंकि उसको पुलिस और आर्मी प्रेशराइज कर रही है कि आप सच नहीं बोलो। जो उन्होंने वीडियो उठाया है जिसमें उन्होंने उसको मजबूर किया गया था वो बयान देने के लिए, आप उसी पर कायम रहेंगे।
19 अप्रैल को हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच को लेकर सरकार को एक नोटिस भी जारी किया है। लड़की ने अभी तक 2 बयान दिए हैं और दोनों ही बयानों में उसने सैनिक की छेड़छाड़ से इनकार किया है। ताहम परिजनों के वकील का कहना है कि दोनों ही बयान दबाव में आकर लिए गए हैं। इस मामले में सेना और सरकार ने अलग अलग जाँच के आदेश दिए हैं। लड़की ने 3 दिन पहले महिला आयोग को बताया है कि पुलिस ने धोखे से उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड किया जिससे वो काफी ज्यादा मानसिक दबाव में हैं। ये घटना 12 अप्रैल की है जब कश्मीर के हिंदवाड़ा कस्बे में कुछ स्थानीय लोगों ने एक सैनिक पर लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद एक कस्बे में विरोध प्रदर्शन हुए थे जिन पर सेना ने गोली चलाई थी जिसमें 3 नौजवानों की मौत हो गई थी जबकि 2 अलग अलग प्रदर्शनों के दौरान एक महिला और युवक की मौत हो गई थी। माजिद जहांगीर, बीबीसी हिंदी, श्रीनगर।
सूखे से परेशान राज्यों में झारखंड भी है और उसकी कहानी सुनाएंगे आपको अभी कुछ देर बाद। पहले देख लेते हैं कि आज के अखबारों के क्या हाल हैं। प्रभात पांडे अखबारों पर नज़र डाल चुके हैं, बताइए क्या कुछ छपा है आज।
जी निखिल, हिंदुस्तान टाइम्स मेरे हाथ में है और इसमें खबर छपी है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की जो जांच रिपोर्ट है जिसमें कि कन्हैया और कुछ अन्य छात्रों को 9 फरवरी को हुई जो अफजल गुरु की फांसी को के विरोध को लेकर जो कथित तौर पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर जो छात्रों पर बैन लगाया गया था, कन्हैया पर जुर्माना लगाया गया था, उस जांच रिपोर्ट को कन्हैया और उनके साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया और जलाया।
अच्छा।
और जी, और ये फोटो भी बनी हुई है कि उन्होंने इस जाँच रिपोर्ट को जलाया, इसका विरोध किया और कहा है कि हम हॉस्टल खाली नहीं करेंगे, जुर्माना भी अदा नहीं करेंगे। यानी एक प्रकार से फिर से यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों के बीच में गतिरोध नया उत्पन्न हो गया है, तो ये वाली खबर छपी हुई है। और हिंदुस्तान टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जिससे इन्होंने जगह दी है, उस रिपोर्ट कहती है कि राजधानी दिल्ली में जो बलात्कार केस के आरोपी हैं उनके एक्विटल यानी छूटने के चांसेस 83% हैं, यानी 83% केसों में मामलों में जो है वो आरोपी छूट जाता है, ये खबर है। इसके अलावा
ये दिल्ली का है,
ये दिल्ली का, राजधानी दिल्ली का है। इसके अलावा जनसत्ता में खबर छपी है कि जो ऑड इवन जो पीरियड है 15 अप्रैल से 30 अप्रैल उस दौरान सांसदों के लिए विशेष बसें चलाने की जो दिल्ली सरकार ने शुरुआत की थी उसको सांसदों की तरफ से कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, बहुत कम सांसदों ने उसका इस्तेमाल किया, यानी सांसदों को ये आम लोगों की सवारी रास नहीं आई।
ये तस्वीर क्या दिख रही है, बड़ी भयानक आग, ये कल वाली आग तो नहीं?
जी ये कल वाली आग है, फिक्की ऑडिटोरियम में जो आग लगी थी उसमें एक बड़ा नुकसान ये हुआ है कि नेशनल म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वो जल के खाक हो गया और उसमें कई बहुत ही दुर्लभ जानवरों के अवशेष रखे हुए थे वो जल गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में भी यही खबर छपी हुई है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छापी गई है कि ऐश्वर्या राय ने सलमान खान को गुडविल एम्बेसडर जो ओलंपिक का बनाया गया है भारतीय ओलंपिक समिति ने उसका समर्थन किया है, सलमान खान का के बचाव में ऐश्वर्या राय आई हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी फिल्मी पर्सनैलिटी का स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना कोई गलत बात नहीं है। इसके अलावा जल्दी से मैं आपको बताना चाहूँगा, अमर उजाला में खबर छपी है कि संसद की एक स्थायी समिति ने ये रिकमेंड किया है कि जो भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी हैं उनको जेल भी हो सकती है। तो इस तरह जी इस तरह की खबरें हैं। एक छोटी सी खबर दैनिक भास्कर में ये बताना चाहूंगा कि भारत में डे नाइट टेस्ट मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम तैयार हो गई है, इसी साल ये डे नाइट टेस्ट मैच प्रस्तावित है।
बहुत शुक्रिया प्रभात इन अखबारों की समीक्षा के लिए। और आइए अब अगले खबर का रुख करते हैं। झारखंड के पठारी और आदिवासी इलाकों में बड़ी आबादी की जिंदगी संकट में है, गांवों से लेकर शहरों में पीने का पानी मैसर नहीं है, खेतों में दरारें पड़ी हैं। लोग बता रहे हैं कि ये हालत पहले कभी नहीं देखी गई। सरकार ने संकट को आपदा घोषित कर दिया है, पेयजल विभाग के अफसरों इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सरकारी मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। क्या है जमीनी हालत, रांची से नीरज सिन्हा की खास रिपोर्ट में सुनिए।
सार हाल ठीक था उधर, लेकिन इन सार एकदम खत्म हो गया है। तो सार उधर था, पानी रहता था, लेकिन यह इन सार एकदम खत्म हो गया है।
सुदूर गांव के गरीब बुजुर्ग की यह अंतरनाद कौन सुने, नदियां सूखी, ताल तलैये सूखे और कुएं का पानी पाताल में जा पहुंचा। सिंचाई के बिना दूर दूर तक खेत वीरान है, थोड़ी बहुत लगी फसलें झुलस रही हैं। रांची जिले के आदिवासी गांव चंद्रा टोला के कार्तिक मुंडा कहते हैं,
बैसाख जेठ के आसपास तो और दिक्कत हो जाएगा हम लोग का, और खाने पीने का तो बातें छोड़िए, नहाने धोने का, बैल बकरी का भी बहुत चीज का समस्या आएगा सर। ऐसे भी हम लोग क्या बताते हैं, मजदूर करके खाते हैं और ऐसे भी हम लोग रात भर ऐसे सोते नहीं है सर पानी के चलते।
70 परिवारों के इस गाँव में सिर्फ एक कुआं है, अब इसमें महज बित्ता भर पानी बचा है। गांव की एक महिला रूपन की पीड़ा कम नहीं।
इनकर सब पानी कर बड़ी दिक्कत हो गईला, नहाए धोए के छुआ मन के, और इसने भी स्कूल अगर भेजे लाई गए तो सर मैडम कहे लाई गए थे इनकी छुआ के बड़ी गंदा से भेजे लाई गए थे, हम इनकर कुआ डाड़ी में पानी न खाई तो का मैं नहुआ बई धोआ बई।
सिमलिया गांव के पुसुआ महतो कहते हैं,
अभी देखिए गर्मी से आदमी त्राहिमाम कर रहा है, पीने का पानी नहीं है, चारों तरफ मतलब हरियाली था, सब सुखाड़ के कारण एकदम उजाड़ हो गया है।
सरकार से कोई मदद मिल रही है ऐसा लगता है?
नहीं सर, कुछ भी मदद नहीं मिल रही है। सरकार से मदद मिलती तब तो फिर हम लोग मतलब सिंचाई कर लेते सर, खेती बाड़ी पूरा चौपट हो गया सर, कुआं भी सूख गया है तो खेती कहां से कर सकते हैं।
इसी गांव के एक बुजुर्ग हरिलाल सरकार पर तंज कसते हैं।
अभी तो चैत महीना है, जेठ और बैसाख असल ताव दिन है ना, कुछ हम लोग को सरकार वैल्यू नहीं लगा रहा है। कब वैल्यू लगाता है? भोटवा समय ने हम लोग को वैल्यू लगाता है, वोट दो भाव, वोट दो इस सरकार को।
तो संकट में मनरेगा कितना कारगर है, इस पर कार्तिक मुंडा बताते हैं कि पेच इतने हैं कि डर से कोई मनरेगा का काम नहीं लेता।
अगर 20 फीट नीचे जाते हैं पत्थर निकलता है तो हम अटक जाएंगे। अगर मान लिया अगर कितना का अमाउंट अगर निकाला होगा, स्कीम निकाला होगा, इसका फंड से अगर पैसा खत्म हो गया, एक तो ऊपर से हम भी खटे वो भी मरे और फिर ऊपर से भी पेंडिंग रहा, तैयार हो पाता नहीं।
इसलिए मनरेगा का कुआं लोग डर से लेता ही नहीं,
डर से लेता नहीं है।
झारखंड से बंगाल जाने वाली सड़क पर बरवादाग गांव के पास 9वीं कक्षा के छात्र रोशन मिले।
बहुत संकट है, पानी का भी संकट है। अभी देखिए ये सामने वाला कुआं अभी सूखने वाला है, पानी लाने भी 2-3 किलोमीटर दूर तक जाते हैं।
गाँव से इतर सूबे की राजधानी रांची और अन्य शहरों में भी पानी के लिए जिंदगी हलकान है। राजधानी के बड़े इलाके में पानी की राशनिंग की जा रही है। पेयजल संकट पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने अफसरों से कहा है कि भले ही सेना की मदद लें लेकिन लोगों को पीने का पानी दें। राजधानी में रहने वाली सुखमनी देवी कहती हैं,
नंबर आया तो ठीक है, नंबर आते आते सप्लाई पानी भी आता है वो भी चल जाता है, नहीं भर पाते हैं। पानी भरने के समय से देखेंगे काम भी जाना रहता है, अब काम नहीं जाएंगे आदमी, गरीब आदमी तो खाएंगे का, इसे थोड़ी ना कि सूखा चावल को आदमी चबा के खा जाएंगे।
इन्हीं हालात के मद्देनजर सरकार ने इस संकट को आपदा घोषित किया है। पेयजल आपूर्ति तथा सिंचाई विभाग के मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी का कहना है,
पेयजल समस्या हमारा है पठारी इलाके में ये समस्या होती है और इसके लिए पर्याप्त हम लोग साधन सब जिलों को उपलब्ध कराया है, क्योंकि इस वर्ष बारिश भी कम हुई जिसके चलते राज्य सरकार ने इसे आपदा के रूप में भी लिया है और इसको त्वरित कार्रवाई करने के लिए हर एक जिला को हम लोगों ने अलर्ट भी किया, सूचना मिलते ही हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे।
इस संकट पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि और मौसम वैज्ञानिक एके बदूद का कहना है,
मुख्य कारण ये है कि झारखंड में भूगर्भ जल इकट्ठा होने की जो क्षमता है वो ऐसे भी कम है, लेकिन पहले जो भी क्षमता है वो ही पर्याप्त हुआ करता था यहाँ के डोमेस्टिक नीड के लिए, एग्रीकल्चर नीड के लिए, क्योंकि भूगर्भ जल का ज्यादा दोहन नहीं हुआ करता था। लेकिन भूगर्भ जल संचयन और संग्रहण के दिशा में सिर्फ बातें हो रही, काम ज्यादा नहीं हो रहा है।
बहरहाल सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अधिकतर जिलों में भूगर्भ जल का स्तर 48 से 60 फीट तक नीचे गिरा है, बारिश का 80% पानी बह जाता है, राज्य में 40,000 चापाकल खराब पड़े हैं, पाइप से गांव की 10% आबादी को ही पानी की आपूर्ति होती है। जाहिर है सरकारी गैर सरकारी स्तर पर सतर्कता नहीं बरते गए तो तबाही बढ़ेगी। नीरज सिन्हा, BBC रांची।
देश भर में अलग अलग हिस्सों में जो सूखे का संकट चल रहा है उस पर अलग अलग हिस्सों से हमारी कई रिपोर्ट आपको मिल सकती है, अगर आप जानना चाहें, देखना चाहें तस्वीरों में, तो आइए कभी bbchindi.com पर। और आइए अब सुन लेते हैं कार्यक्रम के आखिर में प्रभात पांडे से एक बार फिर समाचार।
BBC समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर 5 राज्यों में हो रहे प्राइमरी खत्म हो गए हैं और अब नतीजों का इंतजार है। जनमत सर्वेक्षणों के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन के जीतने की संभावना है। वेनेजुएला की सरकार ने देश में चल रहे जबरदस्त बिजली संकट को देखते हुए ऐलान किया है कि सभी सरकारी दफ्तर सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही खुलेंगे। स्पेन में नई सरकार के गठन में नाकामी के बाद एक बार फिर से जून में चुनाव होंगे। बांग्लादेश की प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील सारा हुसैन ने कहा है कि देश में हालात बहुत खराब हैं और सरकार के स्थिति नियंत्रण में होने के दावे गलत हैं। बांग्लादेश में इस सप्ताह समलैंगिकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की दिल्ली में मुलाकात में चरमपंथ और कश्मीर के मुद्दे छाए रहे। भारतीय विदेश सचिव ने पठानकोट और मुंबई के चरमपंथी हमलों की जांच और दोषियों पर मुकदमे चलाने की मांग की तो पाकिस्तान ने जोर देकर कहा कि कश्मीर एक अहम मसला है जिसका हल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। अमरीका की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक एप्पल ने साल की पहली तिमाही में अपनी आमदनी में गिरावट दर्ज की। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में इतना ही। आपसे एक घंटे बाद विश्व भारती में फिर मिलेंगे। स्टूडियो मैनेजर दीपक के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।